ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरुप्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहावत है, जगत दो रंगी है। जगत विच एक रंग है ही नहीं। सुख है, दुख है, जन्म है, मरण है, इज्जत है, बेइज्जती है, हासे ने पर रोने भी ने। सिर्फ तंदुरुस्ती नहीं, बीमारियां भी जो है नाल ने। सिर्फ चढ़दी कला नहीं, ढहंदी कला भी नाल है। इस तरीके नाल समूह ब्रह्मंड ते निगाह मारिए, ब्रह्मंड दो रंगी है। पर धार्मिक चिंतन करने वाले पुरुष ऐसा कहते ने, प्रभु भी दो रंगी है, ईश्वर भी दो रंगी है, और उसके दो रूप मने ने, निर्गुण ते सरगुण। जैसे कि सुखमनी साहब विच गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला आधार जिन सगली मोही। ओ निर्गुण भी है, ओ सरगुण भी है, ओ निर्गुण रूप विच अदृश्य है, ओ सरगुण रूप विच प्रगट है। जैसे मकान प्रगट है पर बुनियाद गुप्त है, दरख्त प्रगट है पर जड़ां गुप्त ने, शरीर प्रगट है पर आत्मा गुप्त है, संसार प्रगट है पर निरंकार गुप्त है। शरीर दा जो गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, और आत्मा दा जो प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। दरख्त दा जो गुप्त हिस्सा है वो जड़ां ने, और जड़ां दा जो प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। ये सूक्ष्म ते अस्थूल, गुप्त ते प्रगट, निर्गुण ते सरगुण आपस देच जुड़े हुए ने। ईश्वर दी इस नियमावली नु समझदे होयां गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिस पंथ दी साजना कीती, ओ भी दो रंगी है, यक रंगी नहीं। यही कारण है कि ए कौम सारी दुनिया विच दो नामां नाल जानी जांदी है, एक सिख एक सिंह। ए दो रूप ने। गुरु नानक दे नौ स्वरूप सिख दी तामीर विच रहे, सिख दी उसारी विच रहे, सिख नू बनाया, संवारिया, शिंगारिया। और जब सिख परपक हो गया, बन गया, तामीर होके प्रगट हो गया, उसे नु शिंगारिया, सवारिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, और नाम दिता सिंह। सिख सूक्ष्म है, सिंह अस्थूल है। सिख आत्मा है, सिंह शरीर है। सिख निर्गुण है, सिंह सरगुण है। और ये दोवें सम्मिलित ने इस तरह, जैसे कि जड़ां ते दरख्त, बुनियाद ते मकान। ये ठीक है कि बुनियाद दी तामीर विच बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या, बड़ी साधना। और एक दफा बुनियाद कमजोर होवे तो उस दे ते पुख्ता मैल नहीं उसारे जा सकते। जड़ां कमजोर ने तो ओ वृक्ष गगन चुंबी नहीं हो सकता, और बहुत वधिया फुल ते फल प्रगट नहीं कर सकेगा। इस वास्ते जड़ां ते, बुनियाद ते गुरु नानक ने जोर दिता, ए पुख्ता होवे, ए महान होवे, और ए अपने आप विच बहुत ही मजबूत होवे। इस वास्ते नौ रूपा ने सिख दी तामीर कीती। सिख दा जन्म है गुरु दी विचार तो, गुरु दे शब्द तो। जैसे के सतगुरु देव जी महाराज दा वाक है, सिखी सिखिया गुरु विचार। सिख दी होंद खड़ी है गुरु दी विचार ते। सिख दा जन्म है गुरु दी विचार दे तो। इतनी गल स्पष्ट है कि मनुख केवल तन नहीं, विचार है। मनुख सिर्फ शरीर नहीं, वो विचार भी है। जब असी कहने हां कि फलाना मनुख बिल्कुल बदल गया, तो की बदले है? मुंह बदल गया, मत्था बदल गया, हाथ बदल गए, पैर बदल गया, कुछ भी नहीं बदला, विचार बदल गए ने। विचार दे बदल दें मनुख बदल जांदा है। इक आलम दा कहना तस्वीर उम्मीदों की आईना मलालों का इंसान जिसे कहते हैं मुहश्शर है ख्यालों का। मनुख की है ख्यालां दा इकट्ठ, मनुख की है विचारां दी मूर्ति, और जैसे इस दे विचार ने हकीकत दिच वैसा ही मनुख है, किरदार वैसे ही प्रगट होंगे। मनुख दी सोचनी, मनुख दा चिंतन, मनुख दे फुरने वास्तविक की ने, बस यही मनुख दी असली तस्वीर है। इना फुरनिया नू, इस चिंतन नू, इस सोच नू सवारन दी शिंगारन दी कोशिश की थी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। आपने गहरे तल दिच मनुख दे मन दिच झात मारी, मनुख दे फुरने ठीक नहीं, मनुख दी सोचनी ठीक नहीं, मनुख दा चिंतन ठीक नहीं। ये जो अंतिशकरण है, जो शरीर दे अंदर कम करदा है, इनू चतुष्टा अंतःकरण करके कहे है। चार शक्तियां दा मजमुआ, चार शक्तियां दा जोड़। प्रथम शक्ति नू मन कहंदे ने, दूसरी नू बुद्ध कहंदे ने, तीसरी नू चित कहंदे ने, और चौथी नू अहं कहंदे ने। जो फुरनिया दा प्रवाह है ओ मन है। किस फुरने दे मुताबिक जिंदगी ढालनी है ते किस दे मुताबिक नहीं ढालनी, ये जो फैसला करना है ये बुद्ध है। मन ही बुद्ध बन जांदा है। और कीते हुए फैसले नू याद रख सकिए, चेते रख सकिए, वो तीजी शक्ति चित है। और इन्हां तिन्हां हालतां विच जो चौथी हालत हर वक्त व्यापक रहिंदी है वो है अहंग भाव। भाव ये मेरे फुरने ने, ये मेरी सोचनी है, और ये मैं याद कर रहा। इस नू घड़ना सी गुरमति सारी शिक्षा दीक्षा मन नू घड़न दी है। और जब मन घड़िया जांदा है तो वो ऐसा हो जांदा है जैसे एक पत्थर दे चों भगवान दी मूर्ति प्रगट हो गई है। संत राशी आउंदे ने गुरु लोक भी, बुत घाड़े दी तरह आउंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि संग तराश एक निर्जिंद पत्थर नू घड़दा है, गुरु एक जिंद जान वाले पत्थर नू घड़दा है। मूर्ति कद प्रगट होंदी है, कुछ फालतू पत्थर दे टुकड़िया नू एक पासे करिए मूर्ति दा जन्म हो गया, कुछ फालतू विचारा नू एक पासे करिए तो अंदरों ही निरंकार दा जन्म हो जांदा है, अंदरों ही परमात्मा दा जन्म हो जांदा है। इना फालतू विचारा नू गुरु नानक देव जी महाराज मनुख दे अंदरों तराशन दी कोशिश करदे रहे, और बड़ी प्रबल सफलता आपनू जो है मिली। सिख शब्द धार्मिक दुनिया दा अत्यंत निर्माण शब्द है। सिख तो मुराद है कि मैं सिखण नू राजी हां, मैं सिखना चाहना, मैं सिखण दी लगन रखना। लेकिन सिखण लई पहले कबूल करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि जिस दे अंदर ये दावा हो जाए मैं सब कुछ जानता, बस इत्थों ही गलत हो गई, ये सिख है ही नहीं। कम से कम ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मैं सच दे संबंध विच ते कुछ भी नहीं जानता, मैं परमात्मा दे संबंध विच ते कुछ भी नहीं जानता, मैं सच्चाई दे संबंध विच ते कुछ भी नहीं जानता। इतना तस्लीम करदिया वो सिखी दी क्लास विच दाखिल हो जांदा है। ते जब सिखना आरंभ कर देंदा है तो वास्तविक सिख हो जांदा है। इतना निर्माण शब्द दिता कि जगत देच इतना कुछ है, प्रभु दे साजे हुए इस ब्रह्मंड देच इतना कुछ है। सिखण नू जीवन छोटा है लेकिन सिखण लई शिक्षा बहुत पई है, बहुत पई है। मनुख समुचे जीवन नू एक चम्मच दी तरह समझे, और जितनी शिक्षा बिखरी पई है वो ते सागर दी तरह है। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात एक दिन सागर दे तट ते टहल रहा है, की देखदा है एक बालक सागर दे तट ते रो रहा है। जारो जार मनुख दी मूल भाषा जन्म तो जो भाषा परमात्मा गल विच पांदा है वो है हसना ते रोना। बाकी ते संस्कारां दी भाषा है, ये प्रभु दी देन है, ईश्वर दी देन है। हसना ते रोना ये सारी दुनिया दा सांझा है, और ये अपने आप दे एक भाषा है। रो रहा है कोई तो फौरन पता चलता है दुखी है, हंस रहा है कोई तो फौरन पता चलता है ये प्रसन्न है, ये खेड़े दे च है। हसना अपने आप दे च और रोना अपने आप दे च मुकम्मल भाषा है और सारी दुनिया दी सांझी है। जब कोई हंस रहा होवे तो असी ऐसा नहीं कह रहे कि ये संस्कृत दे च हंस रहा है या पर्शियन दे च हंस रहा है, ये पश्तो दे च हंस रहा है या इंग्लिश दे च हंस रहा है, ये फ्रेंच दे च हंस रहा है या मराठी बंगला दे च हंस रहा है, हिंदी या पंजाबी दे च हंस रहा है, बस हंस रहा है। ये भाषा सांझी है और कोई रो रहा होवे तां वी सानू ये कहण दी लोड़ नहीं पैंदी ये पंजाबी दे च रो रहा है या सिंधी दे च रो रहा है, हिंदी दे च रो रहा है या इंग्लिश दे च रो रहा है। रोना एकदम समझ दे च आ जांदा है, सारियां दी समझ दे च आ जांदा है, हासा एकदम पकड़ दे च आ जांदा है और हर तरह दा हासा फौरन पकड़ दे च आ जांदा है। रो रहा सी बालक पकड़ दे च आ गई गल सुकरात दे, बहुता दिमाग लगाउण दी लोड़ नहीं पई, नेड़े आए बालक दे सिर ते हथ रखिया आख्या बालक क्यों रो रहे हैं, तेरे रोने ने मेरे हिरदे नूं तड़पा के रख दिता है। हथ जोड़ के बालक कहिंदा मैं दुखत हो गया, ऐ मेरे हथ विच प्याला वेख दे हो, मैं इस सागर नूं भरन दी कोशिश करदा प्याले विच पर मैं जितनी दफा भरिया जितना भरिया सागर बच रहिंदा है, इस सारे दा सारा सागर मेरे प्याले विच आना चाहिदा है। कहिंदे बच्चे दे ए बोल सुन के सुकरात भी रोण लग पे। बच्चा कहिंदा बाबा तुसी भी रोण लग पे पर दसो ते सी थोड़ा प्याला किथे है। बच्चे मासूमियत दे नाल ऐसा समझे ते ऐसा कहन लगा, सुकरात कहन लगा मेरा प्याला भी मेरे कोल है, तू इस प्याले विच सागर नू भरना चाहना है, मैं छोटे जिया दिमाग दे प्याले च सारे परमात्मा नू भरना चाहना, सारी ब्रह्मंड दी जानकारी नू भरना चाहना। अज समझ दे चाई गल के प्याले दे सागर नहीं आण लगे। बुजुर्ग दार्शनिक संत दे मुंह ए बोल सुन के बच्चा निराश होया, लेकिन अंदरों एक उमंग भी पैदा हुई, उन्हें प्याला चुक के सागर दे सुट दिता, आखिया ऐ सागर जे तू मेरे प्याले विच नहीं आ सकदा तो कम से कम मेरा प्याला ते तेरे विच आ सकदा है। बच्चे दी पैरी पै गया सुकरात, हे परमात्मा तू सारे दा सारा मेरे हिरदे च प्रगट होवे औखी गल है पर मैं सारे दा सारा तेरे विच लीन हो सकदा। सूरज दी किरण साडे कमरे च आ सकदी है, उसदा चानना साडे कमरे च आ सकदा है, सारे दा सारा सूरज साडे कमरे विच नहीं आ सकदा। परमात्मा दे जिहड़े गुण ने बस गुणा दी किरणा दे राही परमात्मा साडे हिरदे नूं प्रकाशित कर सकदा है। अगर असी हिरदे दे द्वार खोल दईए, अगर असी हिरदे दे दरवाजे खोल दईए, जो हिरदे दे कपाट खोलण नूं राजी हो जाए उसे नूं कहिंदे ने सिख, जो सिखण नूं राजी हो जाए उसे नूं कहिंदे ने सिख, और जो सिख होवेगा क्योंकि सिख दा जन्म है गुरबाणी दी विचार शब्द दी विचार तों, ते जिस तों जन्म होवे उस दी अंस नाल रहिंदी है। मां बाप तों इह शरीर आया है तो मां बाप दी अंस शरीर दे च मौजूद है। गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विद जाने। उस विधाते दी इस विधि नू कौन जानदा है कि पुरुष दे अंदर नारी बैठी हुई है और नारी दे अंदर पुरुष बैठा होया है, क्योंकि शरीर आउंदा है नारी पुरुष दे सुमेल तों, तो कोई ऐसा पुरुष नहीं जिस दे अंदर नारी नहीं बैठी और कोई ऐसी नारी नहीं जिस दे अंदर पुरुष नहीं बैठा। साहिब दा ए फरमान कि पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विद जाने। आखरी स्त्री पुरुष तो ते शरीर आया है, मां बाप तो इह शरीर आया है, सिख दा जन्म है शब्द तो विचार तो, और जिस तो जन्म होंदा है उस दी अंस ते नाल रहिंदी है। अगर रोम रोम विच गुरबाणी दी विचार है, रसना ते शब्द दा जाप है, हिरदे विच शब्द दा चिंतन है तो ए सिख है। अगर हिरदे विच शब्द दा चिंतन नहीं जबान देते शब्द दा उचारण नहीं और रोम रोम दे शब्द दी झरनाट नहीं तो ये सिख नहीं। सिख होना मामूली गल नहीं, सिख महान है। सिख दा ते जन्म ही विचार तो है, ते जब जन्म ही विचार तो है तो सिख ते विचार दी मूर्ति होंदा। सिख कतई अज्ञानी नहीं हो सकता और सिख कतई अहंकारी भी नहीं हो सकता। या इंज कह दिता जाए जो अहंकारी है वो सिख नहीं है और जो अज्ञानी है वो सिख नहीं है, क्योंकि एक यही कौम है जगत दे जिसनु असीं सिख कहने आ, इति विचार नु मत्था टेक दिए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की ने विचार दी मूर्ति, ज्ञान दी मूर्ति, और रूहे जमीन ते यही कौम ज्ञान नु ही गुरु मन दिए। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। गुरु ग्रंथ साहब नु मत्था टेकना विचार दे संगम नु मत्था टेकना है, विचार दे सागर नु मत्था टेकना है। और जद विचार दे सागर दे अगों कोई झुक रहा है तो स्पष्ट गल है उस दे अंदर विचारां दी लहर, विचारां दी तरंगा उत्पन्न होनिया चाहीदियां ने। सिख ओही है जो विचार दी मूर्ति है, ज्ञान दी मूर्ति है। सिख कतई अज्ञानी नहीं हो सकता और सिख कतई अहंकारी नहीं हो सकता। अहंकार दा होना इस गल दा सबूत है, इस मनुख दे अंदर निरंकार दी विचार नहीं है। सिख तराशिया जांदा है और सुंदर मूर्ति बन जांदा है। तराशना किसनु है? मन। मन की है काम, मन की है क्रोध, मन की है लोभ, मन की है मोह, मन की अहंकार। ते जद इसनु त्रास देंदे ने तो काम लज्जा बन जांदा है, मोह प्रेम बन जांदा है, क्रोध वीर रस बन जांदा है, लोभ संतोख बन जांदा है, अहंकार विनम्रता दी मूर्ति बन जांदा है। बस यही सिख दा घड़िया होया रूप है, जिसदा अहंकार निर्माणता दी मूर्ति हो गया, जिसदा मोह प्रेम दा रूप हो गया, जिसदा क्रोध वीर रस दे तब्दील हो गया और जिसदा काम लज्जा दे रूप धारण कर गया, शर्म होया। समाज दे दायरे दे च रहिंदा है, समाज दी दीवार नू तोड़दा नहीं। जिसनु कबीर ने कह दिता है, पैर चोलना गधा नाचे वैसा भगत करावे। कामी जानवरां दे चों खोता ते हाथी अत्यंत कामी ने। भगत कबीर कहिंदे ने इह जो कामी खोता है पहले मेरे अंदर नचदा सी पर नगन नचदा सी, पर जिस दिन दा मैं जाप कीता है, प्रभु दी बंदगी कीती है, गुरु दी शिक्षा दीक्षा लई है, खोता ते हुण वी नचदा है पर चोला पा के नचदा है। पैर चोलना गधा नाचे वैसा भगत करावे। काम ने शर्मो हया दा चोला पहन लिया। इस तरीके नाल जो घड़ी हुई मूर्ति है उसनु सिख कहिंदे ने और सिख गुरु नु कबूल है, सिख गुरु दा रूप हो जांदा है, सिख ते गुरु मान करदा है। गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। मनुखी शरीर दी सिरजना विरोधी तत्तां ते खड़ी है। एक तत् दूसरे जैसा नहीं है, स्वभाव करके भी, रंग करके भी, स्वरूप करके भी। पानी, अग्नि, हवा, आकाश, धरती ये भिन्न भिन्न ने। भिन्न भिन्न कहना भी ठीक नहीं, विरोधी ने, एक दूसरे दे विरोधी ने, पर फिर भी कठे ने। और इन्हां सारियां विरोधियां दे इकट्ठ ते नाल ही तन दी बणतर है, शरीर दी बणतर है। कई दफा ख्याल आउंदा है गुरु नानक शांतमई गुरु गोबिंद सिंह दे कोल वीर रस टपकदा है। सिख दा स्वरूप कुछ होर है, सिंह दा स्वरूप कुछ होर है। और जद ए भ्रांति हिरदे नू बहुत जोर दी पकड़ लवे तो कई दफा हिरदा चुनाव करदा है, या गुरु नानक ठीक ने या गुरु गोबिंद सिंह ठीक ने। देश दे कुछ ऐसे लोगां ने कह दिता, संत की ते तलवार की, संत की ते शस्त्र की। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे विचार जो जफरनामे दे कलम बंद ने, चुमकारज हमा हील ते दरगुजस्त, हलालस्त बुरदम बशम शेर दस्त, जिंदगी दे सारे मसले शांति नाल हल नहीं आंदे। अगर शांति नाल ही सारे मसले हल होंदे तो पानी दे प्रभु नू अग्नि रखण दी लोड़ नहीं सी। अग ते पानी नू कठा रखना ए शांति ते क्रांति नू कठा रखना है। प्रभु दे नियम नू समझ के ही गुरु नानक ने ही गुरु गोविंद दा रूप धारण कीता, सिख ने ही सिंह दा रूप वटाया। सिख नू पुजारी बनाया शब्द दा, सिंह नू पुजारी बनाया शस्त्र दा। यही कारण है कि तमाम इतिहासक अस्थाना विच जिथे शब्द दा प्रकाश है, शब्द दे जेर साया शस्त्रां दा प्रकाश। सिख ने मत्था टेकना है शब्द नू, सिंह ने मत्था टेकना है शस्त्र नू। सिख दा जन्म होया है शब्द दी विचार तों, सिंह दा जन्म होया है गुरु दी तलवार तों। विसाखी वाले दिन जो म्यान चो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तलवार कड्डी, उसे चो ही सिंह दा जन्म है। सिंह अग्नि दा प्रतीक है, सिख पानी दा रूप है। और ये पानी ते अग जिवें शरीर दे च कठे ने, सिख ते सिंह सुभाव दे च भी कठे ने। ये ठंडा भी है, ये गर्म भी है। ये ठंडा इतना है कि हर एक दे चरना दी खाक है, और ये गर्म इतना है कि हर तरह दे जुल्म नू फूक सकदा है, साड़ सकदा है। हैरानगी आउंदी है कि एक संत ने शस्त्रां दी पूजा कराई और शस्त्र चुकया। एक आलम दा कहना है, ख्वाबों की ना ताबीर की पूजा की है, कब्रों की ना तकदीर की पूजा की है। जिस शख्स ने के कौम को उभारा शातर, उस शख्स ने शमशीर की पूजा की है। वास्तविक जिस दे अंदर कुछ उछाल ते उभार ही नहीं पैदा होया, ऐसी शांति मुर्दा हुंदी है। अगर ऐसी शांति दे दर्शन करने ने तो कब्रिस्तान दे च मौजूद है। कब्रां दे च शांति ही शांति है, मुर्दियां कोल शांति ही शांति है। और वास्तविक शांति ओही है जिस दे च क्रांति दे भी बीज होन। वास्तविक पूर्ण जीवन ओही है जो सिख होण दे नाल नाल सिंह होवे, संत होण दे नाल नाल सिपाही होवे। चीन दे प्रसिद्ध साधु लाओत्से ने चीन दे बादशाह नू अज तो 2500 साल पहले एक शिक्षा दित्ती सी। जद बादशाह हथ जोड़ के साधु दे अगों खड़ा होया, आखण लगा मैनू भी कोई उपदेश दे जेदे नाल मेरी जिंदगी सवरे, जेदे नाल जगत दा जीवन सवरे। लाओत्से कहन लगा, तेरे लई एक कोई संदेश ते उपदेश है कि कदी भूल के भी तू सिपाही नू सिपाही ना बनाई, संत नू सिपाही बनाई। तेरी फौज देच एक भी सिपाही ऐसा नहीं चाहिदा जो संत ना होवे। अगर तू संत नू सिपाही बनाया या सिपाही दे अंदर संतपना पैदा कीता, वो किसे दी असमत दा रखवाला होवेगा, इज्जत दी सुरक्षा करेगा, उस दे होंदिया किसे दी धन संपदा महफूज रहेगी। अगर तू सिर्फ सिपाही नू ही सिपाही बनाया तो असमत खतरे च, इज्जत खतरे च, धन संपदा खतरे च, मान मर्यादा खतरे च, किसे दी संस्कृति खतरे च, किसे दा देश खतरे च, किसे दा धर्म खतरे च। इस वास्ते अपने देश दे च जे तू खतरा नहीं पैदा करना चाहता प्रजा दे लई, तां संत नू ही सिपाही बनाई। विचार दिते 2500 साल पहले लाओत्से ने, वो बादशाह इना विचारां नू साकार रूप नहीं दे सकया। अज तो 300 साल पहले इस महान विचार नू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साकार रूप दिता। आखे में संत नू ही सिपाही बनाना है, सिपाही नू सिपाही नहीं। नौ रूप गुरु नानक दे, संत नू घड़दे रहे, सिख नू घड़दे रहे। और जद सिख सिख बन गया ते सिख दा होना वास्तविक संत दा होना है। उसे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बनाया। उस दे अंदर ही अग्नि दा सही प्रयोग हो सके, इस्तेमाल हो सके, जगत दे लई क्रांतिकारी हो सके, संदेश ते उपदेश दिते। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा एक वाक, अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। हरी दे निकट हो जाएगा अगर इस तरह दी रहनी तैनू आ जाए। केड़ी रहनी? जिस तरह के शरीर दे च पंज तत्त ने। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। जनाब शेख सादी ईरान दे प्रसिद्ध सूफी संत, वो भी इस तरह दी विचारधारा सामने रखदे ने ओ कहंदे ने अबरो बादो मा व फलक खुर्शीद दरकार आनंद तातो नाने बकफारी व बगफलत न खुरी। ए बंदे जरा वेख ते सही तेरे अंदर निरी अग्नि नहीं पानी भी है, निरा पानी नहीं मिट्टी भी है, और निरी मिट्टी नहीं हवा भी है, और निरी हवा नहीं तू आकाश नाल भी संबंधित है। जद पंज दे पंज तत तेरे अंदर विरोधी ने तो तेरे अंदर इना पंज तत्तां दे सूक्ष्म गुण चाहिए ने। धरती तो तू निर्माणता सीखनी है, पवन तो तू रवानी सीखनी है, तेरे अंदर आलस नहीं चाहिदा, तू फुर्तीला चाहिदा। आलसी बंदा ते मुर्दा हुंदा है, और तू पानी तो पवित्रता लेनी है। अगर तेरे शरीर विच पानी है बाहरों तेनू शरीर दी जिहड़ी पवित्रता है पानी तो ही प्राप्त होंदी है, पानी तेनू अंदरों भी यही इशारा कर रहा है। तेरा जीवन पाकीजा होना चाहिदा, पवित्र होना चाहिदा। और फिर तेरे अंदर आकाश है, आकाश जैसे समान रूप विच सारियां दे उत्ते छाया होया है, तेरी दृष्टि दी समानता चाहिदी, सारे एक तरह दे। पर इह सब कुछ ही तेरे अंदर नहीं, तेरे अंदर अग्नि भी है, तेरे अंदर जोश भी चाहिदा है, तेरे अंदर जलाल भी चाहिदा है। पर इह जोश ऐसा जो किसी दी रक्षा कर सके, जैसे कि गुरुवंश साहब जी महाराज दा वाक है, सूरबीर कौन है जो कमजोर दी बां पकड़ लवे, जालम कौन है जो कमजोर दी बां तोड़ देवे। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, दीन कहंदे ने गरीब निमाणे निताणे, ओही सूरबीर है जो कमजोर दी बां पकड़ लवे, और जो कमजोर दी बां तोड़ देवे ओ जालम है। जगत विच इतने जालम ने और कमजोर दी बावां तोड़न वाले ने, अगर सूरबीर ना होन तो कमजोर जी ही नहीं सकदे, लागर लोग जी ही नहीं सकदे। और ए भी हकीकत है कि कमजोर ते मुर्दे दी तरह हुंदा है, अनंत समय तक देश कमजोर रहा, और उसका एक मूल कारण एक नारा दिता अहिंसा परमो धर्मं, कुछ सतपुरुषा ने कुछ महापुरुषा ने, उस वक्त समय की लोड़ सी। कुछ नारे ऐसे होंदे ने समय की लोड़ होंदी है, हर वक्त उन्हां दी लोड़ नहीं आती। वो वक्ती सच ते होंदा है, सदीवी सच नहीं होंदा। वो वक्ती लोड़ ते होंदा है पर वो सदीवी लोड़ नहीं। एक नारा जो महात्मा बुद्ध ने दिता, स्वामी महावीर ने दिता, वक्त दी लोड़ सी, हिंसा बड़ी व्यापक सी, अहिंसा परमो धर्म लोड़ सी, लेकिन इस लोड़ ने देश नू हानि बड़ी पहुंचाई। ए देश 1000 साल तक गुलाम रहा। इत्थे डच आए, पुर्तगेज आए, अफगानी आए, ईरानी आए, अरबियन आए, फिर अंग्रेज आए, इतनिया कौमां दा ए देश गुलाम, इतनी लंबी गुलामी। एक दार्शनिक दा कहना है कि कोई कौम कोई देश एक दिन ले गुलाम हो जाए वो 1 साल ले पछड़ जांदा है, और कोई कौम कोई देश 1 साल ले गुलाम हो जाए वो 1 सदी पछड़ जांदा है। ए देश 1000 साल तो भी ज्यादा गुलाम रहा है, इस दे पछड़ेपण दी कहानी तुसी खुद अंदाजा ला सकदे हो कितनी लंबी है, कितनी विस्तार सहित है। इतनी लंबी गुलामी, इतनी लंबी गुलामी ते मुर्दियां ते हो सकती है। भावे आहदा नारा गुरु नानक ने भी लगाया सी, और ईश्वर दे अगों फरियाद भी कीती सी, एती मार पई गुरु नाने तैं की दर्द ना आया। इतनी मार पै चुकी है, इतने दुखत हो चुके ने हिरदे। हे करता पुरख, मैं इस वास्ते भी फरियाद करदा, हिंदुस्तानी ते गऊआ बन गए ने, गऊ गऊ दे नाल लड़े, मैनू दुख नहीं। पर गऊआ दे वग ते अगर शेर टुट पै, गुरु नानक दे ए वाक, और इस देश नू किसे धार्मिक ग्रंथ दे च हिंदुस्तान आख्या गया है, तो शायद वो पहले ही ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। इस देश दे च किसे धार्मिक रहबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया अपनी बाणी दे च, अपनी कलाम दे च, ता उना महापुरुषां दे च भी महापुरुष केवल गुरु नानक ने। खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, ये हिंदुस्तान शब्द दुनिया भर दे किसे भी धार्मिक ग्रंथ दे च नहीं, ना वेद दे च, ना शास्त्रां दे च, ना उपनिषदां दे च, ना स्मृतियां दे च, ना पुराणां दे च, ना गीता दे च। ये हिंदुस्तान वाक ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਗਊਆਂ। ਗਊ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗਊ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਊ। ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਊਆਂ ਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਖਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰੁਣਾ ਨੇ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੋ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤਵਚਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੋ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੁੰਕਾਰਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੋ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨੂਮਾਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਦ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਗਾਲਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। 17 ਦਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਤੇ 5 ਸੂਈਆਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। ਪਵਣ ਅਸਥੰਭ ਸਤਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਮਨੋਤ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ। ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 5 ਹੈ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, रूप रस गंध। जिस देश असी देखदे हां कि संसार नाल संबंध जोड़ने ने तो शब्द दी ही लोड़ पैंदी है, बोलां दी ही लोड़ पैंदी है। वेख के संबंध नहीं जुड़दे, सूंग के संबंध नहीं जुड़दे, संबंध जुड़दे ने बोल के। इस वास्ते जिथे गूढ़े संबंध होवन असी कह दिंदे आ उस नाल साडी बोल चाल बहुत अच्छी है, ते जिथे संबंध नहीं सानू कहना पैंदा है उहदे नाल ते साडी बोल चाल ही कोई नहीं। हुण होर असलियत नूं लेखीए कि जो नेत्रहीन है, अखां तो रहित हो गया, जिंदगी दे विकास दे द्वार उस लई बंद नहीं ने। अंधिया ने बड़ी उन्नति कीती है, उन्नति हर पहलू दे च गामजन होए ने और अगां वधे ने। ए गल वखरी है कि आखिया जांदा है लोक भाषा दे च अखां गईयां संसार गया, क्योंकि संसार दी सारी ज्ञात अखां ते खड़ी है। पर ऐसा भी आखिया जा सकदा है जबान गई ते निरंकार गया, अखां गईयां संसार गया, जबान गई निरंकार गया। नेत्रहीन इतना दया दा पात्र नहीं जितना कि गुंगा दया दा पात्र है। क्यों? देखण दे चाया कि तरक्की दे द्वार नेत्रहीन मनुख लई बंद नहीं ने। नेत्रहीन मनुख कवि होंदे देखे ने, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर देखे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च एक भगत बैठे ने जो नेत्रहीन ने, भगत सूरदास, जिन्हां दा एक वाक सारंग राग दे च मौजूद है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। तो अंधा ते भगत बन गया। गुरु घर दे हो गुजरे दो प्रसिद्ध कीर्तनी है, भाई सुरजन सिंह, भाई गोपाल सिंह, नेत्रहीन सन। नेत्रहीन मनुख संगीतकार हो सकदा है, कवि हो सकदा है, दार्शनिक हो सकदा है, फिलोसफर हो सकदा है, भगत हो सकदा है, संत हो सकदा है, और तवारीख दे च मिलदे ने, पर एक भी नहीं मिलदा कि होवे गुंगा ते संगीतकार होवे, होवे गुंगा ते कवि होवे, होवे गुंगा भगत बन गया होवे, दार्शनिक बन गया होवे। सारे द्वार गुंगे लई बंद ने। गुंगे दा जीवन बड़ा पीड़ित जीवन है। पंजाबी दा ते इक मुहावरा है कि गुंगे दे इशारे गुंगे दी मां जाने, होर कौन जाने, होर कोई समझदा भी नहीं। इस वास्ते नेत्रहीन मनुख दे दोस्त होंदे ने लेकिन गुंगियां दे दोस्त नहीं होंदे। समाजिक जिंदगी भी नेत्रहीणा दी बड़ी कामयाब देखी गई है, गुंगे दी नहीं। बहुत वड्डा दया दा पात्र है गुंगा। जिथे संसार नाल संबंध नहीं जोड़ सकदा उथे निरंकार नाल भी संबंध नहीं जोड़ सकदा। बोल के ही संबंध जुड़दे ने संसार नाल, और बोल के ही संबंध जुड़दे ने निरंकार नाल। बोलन हार परम गुर एही, ये जिहड़ा बोलना है बस एही गुरु है। ते बोलना चूंके पवन करके है, पवन तत दी प्रकृति है बोलना। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने पवन नु गुरु कहा, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। तत्तां दे चों सिरमौर तत्त है पवन, क्योंकि पवन नहीं तो फिर बोलना बंद है। मिट्टी दी ढेरी पई है, लाश पई है, लाश दे अंदर पानी भी है, मिट्टी दा मुजस्मा भी पे है, सब कुछ है, पवन नहीं रही। स्वासां दी डोरी दे टुटदिया बोलां दी डोरी टुट गई, ते बोलां दी डोरी दे टुटदिया संसार नाल संबंध टुट गए, क्योंकि बोलण दी डोरी नाल ही तेरा सारे रिश्ते खड़े ने। एक सियाणा मेहमान एक दिन दे च ही अंदाजा ला लैंदा है कि पति पत्नी दे संबंध आरजी तौर ते शायद टुटे हुए ने, क्योंकि वेखदे ते ने बोलदे नहीं। दो भरावां दे संबंध शायद वक्ती तौर ते टुटे हुए ने, एक दूसरे नूं देखते रहे ने पर बोलदे नहीं। बोलण दा बंद होना संबंध दा टुट जाना है। और ये जिहड़ा बोलना है, और जितना ज्यादा जिस नाल बोलना है उतनी नेड़ता हो जाती है, उतना मनुख उस दे सुभाव नूं समझदा है ते अपने सुभाव नूं प्रगट करदा है। शास्त्रकारां ने शब्द दी रूपरेखा पंज प्रकार दी मनी है। इस नूं संगीत आचार्या भी पंज ही कहिंदे ने। ते पंज शब्दां दे ए नाम ने तत, वित, घण, नाद, सुगर्स। इन्हां दी बणतर ते इन्हां दी क्रिया ए है, तत तंति वित चरम का, घण का सी का जान, नाद शब्द घट को कहें, सुगर स्वास पहचान। चमड़े दे मड़े हुए साजा दे चों जो आवाज बुलंद होंदी है उनू कहिंदे ने वित शब्द। तंती तारां तो जो धुन बुलंद होंदी है उनू कहिंदे ने तत शब्द। और जो धातुआं दा धातुआं नाल टकराना है उस तो जो नाद बुलंद होंदा है उस नू कहिंदे ने घण। घड़े दे उत्ते थाप मारीए उस तो जिहड़ी ध्वनि बुलंद होंदी है उनू कहिंदे ने नाद शब्द। मुरली है, शहनाई है, हारमोनियम है, संख है, फिर पशु पंखी ने, और मनुख दी जिहड़ी ध्वनि है इनू कहिंदे ने सुगर। सुगर स्वास पहचान, जो हवा तो शब्द बुलंद होवे, जो हवा तो ध्वनि बुलंद होवे उनू कहिंदे ने सुगर शब्द। पशु पक्षियां कोल और मनुख कोल जिहड़ी आवाज है, जिहड़ी ध्वनि है इनू सुगर शब्द कहिंदे ने। लेकिन फिर पशु ते पक्षियां नालों मनुख अगे लंघिया, क्योंकि पशु पक्षियां कोल अखर नहीं ने, अल्फाज नहीं ने, आवाज है अल्फाज नहीं। वो अपनी आवाज नाल अपना बोध ते दे देंदे ने कि जैसे ध्वनि हो रही होवे ते असीं कहिंदे आ इह गऊ है, इस आवाज तो गऊ दी पहचान होई है, इह खोते दी ध्वनि है, इह कोयल पई बोलदी है, इह कौआ पई बोलदा है, इह मैना पई बोलदी है। आवाज तो जिथों आवाज आ रही है उसकी पहचान ते होई। पर एक कोयल नू पुछिए तू कित्थों आई, जाना तू किथे है, तेरा जन्म कदों होया, उहदे कोल केवल आवाज है अल्फाज नहीं। मनुख दे कोल आवाज दे नाल नाल अल्फाज भी है गे ने। जदकि गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने मनुख दे कोल ए जिहड़ी आवाज है ते अल्फाज दे च ए जिहड़े अखर ने, सारा ज्ञान ध्यान, सारी हलचल, सारा लैण देण, सूझ समझ इन्हां दे विच ही समाई होई है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। सारे संजोग सारे रिश्ते अखरां दे उत्ते ही खड़े ने, सारा लैण देण अखरां दे उत्ते खड़ा है। एक गुंगा मनुख दुकान नहीं चला सकदा, एक गुंगा अध्यापक बच्चियां नूं पढ़ा नहीं सकेगा। गुंगे दा ते सारा ही विकास रुक जाएगा, क्योंकि उसदे कोल भी आवाज है अल्फाज ने, अल्फाज चाहिए ने, अखर चाहिए ने। अगां चल के साडे देश दे शास्त्रकारां ने इस आवाज नूं पंज रूप दित्ते ने, पंज प्रकार दी आवाज मन्नी है। एह गल वखरी है कि सिद्धांतिक पुरुष सिर्फ दो हिस्सिआं च ही तकसीम करदे ने, आहत शब्द अनाहत शब्द। आहत शब्द जो दो चीजां दे टकराव तो पैदा होवे, अनाहत शब्द जो अपने आप विच मौजूद है, जिन्हों ब्रह्म शब्द आख्या है, जिन्हों ईश्वरी शब्द आख्या है, जिन्हों परमात्मा दी बाणी आख्या। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी परमात्मा दी ही कलाम कहिंदे ने, अनहद रूप अनाहत बाणी, चरण सरन जय बस्त भवानी। इस्लाम दे मुखी पैगंबर जनाब हजरत मोहम्मद साहब ने सृष्टि दी उत्पत्ति शब्द तो मनी है, शब्द दी रूप रेखा कुन दसी है। समो इस्लाम इस नु मनदा है कि शब्द समो ब्रह्मंड दा आधार है और शब्द दी रूप रेखा है कुन। साडे देश दे वैदिक ऋषि ओ भी इक्को ही मत होके कहिंदे ने कि ओम दी ध्वनि होई ते ओम अनादि शब्द है, उस तो ही ब्रह्मंड दी सिरजना ते बणतर होई। आइए जैन धर्म दी तरफ, ओ कहिंदे ने ओंकार दी ध्वनि अनादि ध्वनि है। ओंकार शब्द जैनियां दे अंदर भी है। ओंकार नाम दा इस देश दे च बहुत वड्डा प्राचीन तीर्थ भी है, इंदौर तो कोई 40 मील दी दूरी ते। इस तीर्थ दे उत्ते गुरु नानक ने एक बाणी भी उचारण कीती है जिस बाणी दा नाम ही है ओंकार, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है, दक्षिणी ओंकार तो मुराद है राम कली दक्षिणी। क्योंकि साडे देश दे दो तरह दा संगीत है, पूर्वी भारत दा संगीत और दक्षिण भारत दा संगीत। तो गुरु ग्रंथ साहिब विच इह दोवें संगीत मौजूद ने, जिथे आ जांदा है गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, इहो गौड़ी गायन करनी है जो पूर्व दिश गायन कीती जांदी है। राम कली दक्षिणी महला पहला, इहो राम कली गायन करनी है जो दक्षिण भारत विच गायन कीती जांदी है। तो राम कली दक्षिणी विच गुरु नानक ने एक बाणी उचारण कीती, उस बाणी दा नां ही रखिया ओंकार, और ये बाणी उचारण कीती ओंकार नाम दे तीरथ दिते। सियाणे कहिंदे ने इह तीरथ जे बहुत पुराना ने तां घट तो घट 3000 साल ते पुराना है। इह ओंकार शब्द तवारीखी रूप विच 3000 साल पुराना ते मनना ही पएगा, लेकिन जैन कहिंदे ने इह शब्द अनादि है, इसका आद नहीं लभिया जा सकता, और उसे ओंकार तो समूह ब्रह्मंड सारी मूर्तियां दी सिरजना हुई। लोग उस नाम दी धुनी हुई ते जगत दी सिरजना हुई, ऐसा ईसाई मत है। गुरमत दी रोशनी विच संसार दी उत्पत्ति नु वेखीए तां गुरु नानक देव जी महाराज भी कहिंदे ने उस करते पुरख तो एक धुनी हुई, एक शब्द होया ते लखां जिंदगियां दे दरिया चल पए। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरिया। लखां जिंदगियां दे दरिया, पशुआं दे दरिया, पक्षियां दे दरिया, कीड़े मकोड़ियां दे दरिया, मनुखां दे दरिया, सूरज चंद तारियां दे दरिया, पता नहीं कितने प्रकार दे दरिया जीवन दे चल पे एक शब्द तो, एक ध्वनि तो। तो सारे दा सारा पसारा धुन तो है, शब्द तो है। गुरु अमरदास जी महाराज दा भी ऐसा फरमान, उत्पत परले शब्दे होवे शब्दे ही फिर उत्पत होवे। ए उत्पत्ति ए नाश शब्द आश्रित है, और मनुख दे कोल बड़ा क्रांतिकारी शब्द है, बड़ा महान शब्द है, क्योंकि एदे कोल अल्फाज ने, एदे कोल अखर ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे ऐसियां भी दो बाणियां ने जो अखरां दी महानता बयान कर दियां ने, और ओ बकायदा गौड़ी राग दे अंदर दर्ज ने, गौड़ी 52 अखरी। एक एक अखर दी महानता, और एक एक अखर मनुख दे कोल खो लिया जाए तो जिथे पशु खड़े ने मनुख अज भी उथे हो जाएगा। सारे दा सारा विकास अखरां ते खड़ा है, और अखरां दी गति आवाज ते खड़ी है। तार्किक ऐसा कहंदे ने कि गुरु ग्रंथ ग्रंथ ते है गुरु नहीं, गुरु दा कम है ज्ञान देना, गुरु दा कम है शिक्षा दीक्षा देनी। गुरु ग्रंथ साहब बोल नहीं सकदे, असी बुलांदे हां। गुरु ग्रंथ साहब अपनी व्याख्या आप नहीं कर सकते, असी कर दें। इस वास्ते असी गुरु हां, ग्रंथ गुरु नहीं, असी गुरु हां। क्योंकि ग्रंथ दी गल असी करदे हां, ग्रंथ दी चर्चा असी करदे हां, और इतना व्यापक पैमाने ते वो प्रचार करदे ने, आम कोमल ते भोले हिरदे इस प्रभाव हेठ आ जांदे ने और आए हुए ने। सवाल यह पैदा होंदा है कि गुरु ग्रंथ वास्तविक की है, ज्ञान दा खजाना, इनू सिर्फ आवाज दी लोड़ है। यह ते ऐसा होया कि जैसे एक पुरुष ने कुछ मुद्दत तो बाद अपने घर पत्रिका लिखी है परदेश तो, पत्नी देना, लेकिन पत्नी अनपढ़ है, चिट्ठी ले गई पड़ोस दे च, कहिंदी वीर जी ए चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। जिस तरह दा रिश्ता होवे चिट्ठी दे संबंधित अल्फाज वैसे ही होंदे ने। बिरा बिरा नू चिट्ठी लिखे तो बिरा करके संबोधन करेगा, मित्र मित्र नू चिट्ठी लिखे तो मित्र करके संबोधन करेगा, प्यो पुत्र नू चिट्ठी लिखे तो पुत्र करके संबोधन करेगा। ए पति ने पत्नी नू चिट्ठी लिखी है तो पत्नी रूप च उसने संबोधन किया है, मेरी प्यारी पत्नी करके उसने लिखे है, और पड़ोसी पढ़ रहे उन्हें अखरा नू, मेरी प्यारी पत्नी, हुंगारा भर रही है पत्नी सुन के। इना शब्दा नू सुनन तो बाद, हुंगारा भरन तो बाद, चिट्ठी पढ़ के सुनान वाला ए सोचे कि मैं अखर पढ़े ने मेरी प्यारी पत्नी, और इन्हें हुंगारा भी भरे है, सुन भी लेने, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਲਹਿਣਾ ਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਨ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੋ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਬਣ ਗਏ, ਨਿਹੋਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੋ ਫਿਰ ਤਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੇ ਬਾਦ ਈਗਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮੱਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਘਰ, ਟਿਕਾਣਾ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਿਕਾਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਹਿਲ, ਮਕਾਨ, ਮਾੜੀਆਂ। ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ, ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਕਾਨ, ਮਹਿਲ, ਮਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਜੋਤ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲਵੇ ਤੋ ਮਕਾਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਘਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਮਕਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੀਜਾ ਮਕਾਨ, ਚੌਥਾ ਮਕਾਨ, ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਮਕਾਨ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ, ਫਿਰ ਦਸਵਾਂ। ਦਸਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਮਕਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਹਿਤੀ ਲੜਕੀ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਕਵਿਤਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕਲਾਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ, ਪੜਦੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਆਇਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੀਵੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੀ। ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਨੇ ਜੈਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਹੱਸੀਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਦਾਨ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਦਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ, ਕੱਲ ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਕੱਲ ਆਏਗਾ। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਬਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਤੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਦਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਆਪਣੀ ਨਾਦਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਦਾ ਹੈ, बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा महान और आलमा दी दुनिया च जानिया पहचानिया। दर सुखन पिनहां शुदम, दर बरगे गुल मानिंदे बू, हरचे दी दन महलदारी, दर सुखन बी नद मरा। मैं अपने शायरी देच इस तरह समाई हुई हां जैसे फुल अपनी महक देच समाया हुआ है। इसका थोड़ा जहा खुलासा, दो मित्र एक बगीचे दे कोलो लंगे जा रहे ने। बगीचे दे चारों पासे उच्ची फसील है, दीवार है, हवा दे तेज झोंकिया नाल फुलां दी महक चार दीवारी तो लंघ के हर एक दा दिल दिमाग मोत्र कर रही है, खुलियां छाला मार रही है। एक मित्र दा दिल दिमाग जद मोत्र होया तो कहिंदा है, कितनी सोहनी गेंदी दी सुगंध आई है, कितनी खूबसूरत गुलाब दी महक आई है, कितनी सोहनी चमेली दी महक आई है। दूसरा कहिंदा है, किथे है चमेली, किथे है गुलाब, किथे है गेंदा, क्योंकि चारों पासे फसील है। वो कहिंदा होवेगी किधरे, पर साडा ते दिल दिमाग मुअत्तर हो गए, असी ते खुशबू देच फुल नू वेख लिया। जेबल नसा ए कह रही है, जिसनू सुगंधी देच फुल दे दर्शन ना होवन ओनू फुल दे दीदार करन दा कोई हक नहीं। वास्तविक शायर दा रूप होंदा उसकी शायरी देच, अगर शायरी देच मेरा रूप नहीं दिखाई देता तो हड मास नाड़ी दा पिंजर की आखे वेखोगे। फुलां दा सेंट शीशियां देच भर के रखिया जांदा है, फुल खत्म हो गए, फुल दा रंग रूप आकार खो गया, लेकिन उसकी रूह मौजूद है सुगंधी दे रूप विच, अतर दे रूप विच, दसां गुरुआं दे शरीर दे अंदर जो परमात्मा दी रूह सी, जो परमात्मा दा चानना सी, जो परमात्मा दी महक सी, ओ गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप विच साक्षात मौजूद है। थोड़ा जिहा नेड़े होके लंघी है, दिल दिमाग मुअत्तर हो जांदा है, बाग बाग हो जांदा है, और पता चल जांदा है केड़ी महक परमात्मा ने भेजी, केड़ी महक परमात्मा ने संसार दे जो है वंडी। गुरु ग्रंथ दी पूजा परमात्मा दी पूजा है, परमात्मा दी पूजा गुरु ग्रंथ दी पूजा है, पोथी परमेश्वर का स्थान। ए साक्षात पोथी, पोथी नहीं परमेश्वर ही विराजमान है। जिथे चानना विराजमान है उथे सूरज विराजमान है, जिथे ज्ञान मौजूद है उथे परमात्मा मौजूद है। गुरु ग्रंथ साहिब नु भावना नाल कीता होया सजदा ए अकाल पुरख नु ही सजदा है। इस वास्ते यही एक कौम है जो सही मायने च पूजा कर दिए और सही मायने च गुरु नु मन दिए। शब्द गुरु है, गुरु शब्द है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।